ओम शांति। वाह 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 वाह, ड्रामा वाह है। और क्या क्या वाह वाह है? नहीं, वाह वाह क्या है और वाह वाह के अलावा? वाह 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 ड्रामा और वाह मेरा भाग्य, वाह संगम योग, वाह ब्राह्मण परिवार, बस वाह परिस्थितियां, वाह माया। हाँ, आई बाबा ने हम सबको पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स कराया, हर बात में पॉजिटिव, क्योंकि जीवन में खट्टे मीठे अनुभव तो सामने आते ही रहते हैं, वो हमारे द्वारा ही तैयार किए गए होते हैं। तो हर चीज को हम पॉजिटिव तरीके से अगर लेते हैं तो हम दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बन जाते हैं, परिपक्व बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, परिस्थितियाँ परिपक्व बनाने आती हैं, पाठ पढ़ाने आती हैं, टीचर है वो हमारी। तो इस ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियाँ आना भी ड्रामा में नूंद है ये। तो इन परिस्थितियों को देखकर हमें हलचल में नहीं आना है, और जरूरी नहीं है ब्राह्मण जीवन में आती हैं, गैर ब्राह्मण जीवन में भी तो बहुत परिस्थितियाँ आती थी ना। लेकिन अब हमको थोड़ा समझ मिल गई है, नॉलेज मिल गई है, लेकिन नॉलेज मिलने के बाद थोड़ा हम नाजुक हो जाते हैं। होना चाहिए शक्तिशाली, लेकिन हो जाते हैं नाजुक। क्यों? फिर सोच लेते हैं कि बाबा तो साथ ही है, सब संभाल लेगा। बाबा संभालेगा तो जरूर, लेकिन पहले खुद को भी तो संभलना पड़ेगा, क्योंकि बीज तो हमने बोया हुआ है, लेकिन परिस्थितियों को सामना करने की बाबा हमारे में शक्ति भर देता है। वो परिस्थितियाँ फिर परिस्थितियाँ नहीं लगती हैं, जैसे खेल की तरह अनुभव होती है। जैसे बाबा कहते हैं कार्टून शो है, मिक्की माउस का खेल है, जैसे बच्चे देखते हैं टीवी में, पहले हम भी लोग देखते थे, अभी तो नहीं देखते। मिक्की माउस का खेल देखते थे ना, तो क्या होता था उसमें, वो बिल्ली और चूहे के ऊपर क्या कुछ गुजर जाता था, एकदम चिपक जाते थे, फिर भी खड़े हो जाते थे। तो हम भी इस ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियां तो आती रहती हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों का एंजॉय करते हैं, वो खेल अनुभव होती हैं, वो हमारे जीवन का जैसे क्या है, आगे बढ़ाने के लिए स्टोन है, वो माना आगे बढ़ने की सीढ़ी है, वो स्टेपिंग स्टोन। तो हम परिस्थितियों से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे पाठ पढ़ें, और वो परिस्थितियां हमको मैच्योर बनाती हैं, वो परिस्थितियां हमको अनुभवी बनाती हैं। अगर जीवन में परिस्थितियां आए ना तो भी मजा नहीं है, सीधा सीधा जीवन चलता ही जा रहा है, कोई बिगड़ने नहीं आ रहा है, और शस्त्र हमारे पास बहुत हैं, तो जंग लगेगा फिर फायदा क्या। लेकिन सामने अगर कोई फौज आती है और हम लड़ाई करते हैं और हम जीत जाते हैं, तो उसका खुशी और नशा अपना ही होता है। तो बाबा कहते हैं परिस्थितियों से घबराओ नहीं, हर प्रकार से परिस्थितियां आएंगी और नए नए रूप से आएंगी, माया भी नए नए रूप से आती है। जैसे परिस्थितियां नए नए रूप से, तो परिस्थितियां ही माया का नया रूप ले लेती हैं, और फिर नया रूप की कैसे लेती हैं वो, हाँ, जैसे अगर हम अलबेले हैं तो माया भी अलबेलेपन के रूप में आएगी। और बाबा ने जो बताया उसके अलावा बताओ, और नए नए रूप में परिस्थितियां कैसे आती हैं? हाँ जी, किसके रूप में? अपना काम करती रहती हैं। हाँ बिल्कुल, लौकिक में आती हैं, अलौकिक में भी आती हैं, और कैसे आती नए रूप में? हाँ जी, जो भी परिस्थितियां हैं, राइट ही समझते हैं उनको, दूर से सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्रोध नहीं करना तो रोग के रूप में आएगी, क्रोध करना ही पड़ेगा जब ऐसी ऐसा वैसा कोई सामने नुकसान ही कर दे, और मन में थोड़ा सा भी संकल्प ना आए, थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। तो परिस्थितियां नए रूप में आती हैं, अट्रैक्शन के रूप में आती हैं। आकर्षण के रूप में माया आती है, और आकर्षण के रूप में जीव का स्वाद के रूप में कमी कमजोरियों के रूप में आएगी, साधनों के रूप में आएगी। जब तक साधनों का अभाव है तो हम साधना नहीं करेंगे, या नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में आएगी। बारिश है तो मुरली घर में सुन लेते हैं, ये भी इस तरह से आ जाएगी। बारिश है तो कोई बात नहीं, अमृत वेला बाद में कर लेंगे, क्या जरूरत है इधर मेडिटेशन हॉल में आने की, हिस्ट्री हॉल में आने की, कमरे में चलता है। बाबा ने तो बोला है खटिया पर सोए सोए भी कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि बाबा के वहां आके फिर हम बाबा को सुनाने चालू कर देते हैं। पिछले संडे की मुरली में था ना कि बाबा तो सब खजाने दिए हैं, लेकिन कई बच्चे बड़े चतुर सुजान हैं, होशियार हैं, फिर बाबा को बोलते हैं अब आपने खजाने दे दिए तो हम जैसे मर्जी यूज करें उसको, फिर आप क्यों सोचते हो। तो ऐसे माया नए नए रूप से आती है, तो माया की सूक्ष्मता को भी समझना है आपको। और माया हमें अगर आती है तो उसकी बारीकियों को समझ कर उसके निकलने का प्रयास करना है। तो ये ब्राह्मण जीवन जो हो क्या है, ये ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव में रहने वाले, हर दिन हमारा उत्सव से संपन्न हो, उत्साह भरा हो। अच्छा, अभी उत्सव में जाते हैं, मेले में जाते हैं तो क्या क्या करना होता है। अगर हमको मेले में मौज करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले हमारे पास माल पानी बहुत होना चाहिए। अगर खाली जेब में चले गए मेले में कुछ मजा आएगा, दूसरों का मुंह देखते रहेंगे बस, कोई जलेबी खा रहा है, खा बो रहा और पानी इधर टपक रहा है, कैसे मजा आएगा फिर। उधर गोलगप्पे खा रहा है तो इमली का पानी इधर टपक रहा है। तो सबसे पहले क्या चाहिए उत्सव में जाने के लिए, माल। अच्छा, अभी हमको कौन सा माल चाहिए, खजाने, जितने भी बाबा से अथाह खजाने मिले हुए हैं वो खजाने हमारे पास भरपूर मात्रा में चाहिए। जितना माल पानी ज्यादा होगा उतना मेले की मौज का अनुभव कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, खुशी का अनुभव कर सकते हैं। अगर खाली जेब गए तो फिर मेला ही उलझन का कारण बन जाएगा। फिर मेले में जाने के बाद थोड़ा और भी ध्यान रखना पड़ता है किसी का, कहीं जेब कट ना जाए, है ना, क्योंकि वहां भी नए नए रूप में आते हैं अपना ठगने के लिए। तो इस ब्राह्मण जीवन के मेले में हम रहते हैं तो माया भी बड़े नए नए रूप से आती, बताया ना बाबा ने कि हमारे खजाने चले ना जाए कहीं। और किस रूप में आती माया, आज की मूल्य में बताया, वाय वाय करना है फलाए, और करते रहते हम क्यों क्या कैसे किसने कहा कहाँ कहा क्यों कहा हमारे लिए क्यों कहा, तो ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा फिर हमको मुंझा देती है, उलझन में ले आती है। बाबा कहते हैं ना क्वेश्चन कैसा है, टेढ़ा है, कड़छी की तरह है, लेकिन कड़छी भी कभी कभी काम आती है, अगर निकालना हो सामान तो बिना उसके नहीं निकलता है ना। तो क्वेश्चन तो हमको करने हैं जीवन में, लेकिन कौन से क्वेश्चन करने हैं, पॉजिटिव रूप से करने हैं, कि मैंने ब्राह्मण जन्म मुझे क्यों मिला है, बाबा ने मेरा ही चयन क्यों किया है, मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मैं कौन कौन सी विशेषताओं को कर्तव्य में लगा रहा हूँ, कौन कौन सी विशेषताओं की कमी है, अभाव है अभी भी, तो हमको उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। यही ब्राह्मण जीवन की कला है। बाबा कहते हैं ना राजयोग क्या है, दूसरों को सिखाते हैं ना, जीवन जीने की कला है। तो जीवन अर्थात अनुभूति, जीवन अर्थात महसूसता होनी चाहिए कि हाँ हमारा जीवन है, नहीं तो जीवन तो होता है लेकिन एक जड़ अनुभव होता है, जड़ जीवन हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। लेकिन चेतन अर्थात हमको अपने जीवन की महत्व का पता होना चाहिए कि इतना ऊंचा जीवन है। बाबा कहते हैं कौन सा जीवन है, ब्राह्मण अर्थात हीरे तुल्य जीवन है। आज बाबा ने क्या बताया, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन गए तुम बच्चे, रूहानी डायमंड बन गए, डायमंड जयंती है तो डायमंड बच्चे हैं। तो हम सब को बाबा ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया है, तो पहले पैराग्राफ में ही बाबा के प्रति हमारा कितना प्यार उमड़ के आता है कि हम क्या थे और क्या बन गए। क्या थे पहले, कोई पूछने वाला नहीं था, अगर पूछते भी थे तो सब स्वार्थ भरा पड़ा था, और अब बाबा ने कहाँ कहाँ बिठा दिया हमको, अपनी पलकों में छुपा लिया। अर्थात बाबा का ज्ञान जब हम चिंतन करते हैं, सुनते हैं, मिलन मनाते हैं, अर्थात हम बाबा के नयनों में समाये हुए हैं। तो ये हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं है, हीरे तुल्य जीवन है। और हीरे को कहाँ रखा जाता है, डिब्बी में रखा जाता है। तो बाबा के हम सब हीरे बच्चे हैं, तो बाबा ने हमको कहाँ रखा होगा, दिल की डिब्बी में रखा है। दिलाराम बाप बच्चों को दिल की डिब्बी में संजो के रखते हैं। वरदान में था ना समा जाना, संपूर्णता अर्थात समा जाना। तो सारा दिन अगर हमको ये भी समझ में रहता है कि मैं बाबा का हीरे तुल्य बच्चा हूँ, तो जैसे बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी जाती है, क्योंकि भगवान के महावाक्यों को हमने पकड़ के रखा बुद्धि में। तो जो चीज़ हमने पकड़ के रखी होती है, जिसकी चीज़ होती है उसकी नज़र रहती है कि ये मेरी चीज़ पकड़ी हुई है, और उसका स्वतः हमारे पर ध्यान बार बार जाता है। तुम बाबा के हीरे तुल्य बच्चे हैं, कौड़ी से हीरा बना दिया। जो हम मूर्ति के आगे जाके मांगते रहते थे, भिखारी से क्या बना दिया, अधिकारी बना दिया, है ना। और क्या बना दिया बाबा ने, कैसे क्या बना दिया, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना दिया। और पत्थर बुद्धि अर्थात हमारे बुद्धि में पत्थर जैसे संकल्प चलते रहते थे, पत्थर जैसे बोल निकलते रहते थे, पत्थर जैसा व्यवहार था, दूसरों को दुख देना, चोट पहुंचाना, कटाक्ष करना। अभी बाबा ने क्या बना दिया, पारस बुद्धि, अर्थात बुद्धि में ज्ञान रत्न भरे हुए हैं, मुख से फूल बरसते हैं, मुख से वरदान बरसते हैं, मुख से क्या बरसता है, परमात्म प्यार बरसता है, परमात्म प्योरिटी के वाइब्रेशन बरसते हैं। तो हमें कौड़ी से हीरा बना दिया। ऐसे अपनी लिस्ट तैयार करनी है, सूची, कि हम क्या से क्या बन गए, ताकि हमको पता तो रहे कि हम क्या बने हैं। अगर हमको ये अपना पता नहीं है कि हम क्या बने हैं, जैसे सामने वाला अगर कोई आए ऑफिसर के पास साइन कराने के लिए और ऑफिसर भूल ही जाए कि मैं साइन कर भी सकता हूँ, तो कैसा लगेगा वो। तो हम बाबा कहते हैं तुम बच्चे विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो। अच्छा, तो मुरली की शुरुआत कैसे थी आज, कौन किससे मिल रहा था? हाँ, त्रिदेव, आगे कोई तो था, त्रिदेव रचयिता, हाँ आगे त्रिमूर्ति और त्रिनेत्री, हाँ बच्चों से मिल रहे थे। तो हम सबको ने कितने टाइटल स्टार्टिंग में दे दिए, तो हमको याद ही नहीं रहेंगे, मेडल हमने लगाए नहीं, तो सामने हमको सैल्यूट कौन मारेगा। सैल्यूट किसको मिलता है, जो मेडल लगा के रखता है। एक है फौजी साधारण ड्रेस में जा रहा है, लेकिन एक फौज की ड्रेस पहनी है, तो सब सेना खड़ी हो जाती है उसके आगे, है ना। तो अगर हमने बाबा से वो टाइटल लिए हैं, अगर हमको स्मृति में है, तो सारा दिन माया हमारे सामने सलाम करती रहेगी, दूसरों को अनुभव होता रहेगा। जो भगत आत्माएं मंदिरों में जाती हैं, झुकती हैं जाके, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की इतनी इच्छा रखती हैं, और अगर हम इष्ट देव ही अपने आप को भूल जाएं कि मैं इष्ट देव हूँ, तो उन भक्तों का क्या हाल होगा, उनको क्या मिलेगा फिर। इसलिए आज अगर हम देखते हैं मंदिरों में भक्त जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो उसके जिम्मेवार कौन है, हमें जिम्मेवार है, क्योंकि हम अपनी स्मृति में नहीं रहते हैं। तो बाबा हम सबको योग की बड़ी अच्छी अच्छी युक्तियां बताते हैं कि इष्ट देव इष्ट देवी बन के मंदिर में विराजमान हो जाओ, है ना। तो अभी एक मिनट, आधा मिनट ये सभी अनुभव करो कि मैं इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में मंदिर में, संसार के सभी मंदिरों में विराजमान हूँ, और सामने असंख्य भक्तों की लाइन लगी हुई है, और मैं इष्ट देवी इष्ट देव इष्ट देवी वरदान्य मुहूर्त में उनके समक्ष खड़ी हूँ, और मेरे हस्त से वरदानों की जैसे बरसात हो रही है, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो शुभ इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए मेरे हाथों से वरदानी वाइब्रेशन जा रहे हैं, या उन भक्तों के सिर पर रखे हुए हैं, उनके दुख परेशानियां, अशांति, सारी बीमारियां, मन से जो त्रस्त हैं, वो सारे दुख दर्द दूर होते जा रहे हैं, और वो जैसे शांति से भरपूर होते जा रहे हैं, वो आत्माएं भी पवित्र बनती जा रही हैं, वो आत्माएं भी परमात्म प्यार का अनुभव कर रही हैं, अपने आप को हल्का अनुभव कर रही हैं, जो भी अनेक प्रकार के बंधनों में मन उलझा हुआ है, वो मन जैसे उनका हल्का हो गया है। तो ऐसे अनुभव करो, आधा मिनट सभी इन संकल्पों के साथ बैठो, सभी अपने फुल ईष्ट देव ईष्ट देवी की ड्रेस में सभी मंदिरों में विराजमान हो जाओ। ओम शांति। तो हमको बीच बीच में अनुभव करने हैं, क्योंकि जो हमारे कर्तव्य हैं अगर हमने वो कर्तव्य नहीं किए तो हमारे ऊपर कितना बोझ चढ़ जाएगा। और वास्तव में बोझ एक तरीके से चढ़ता है, इसलिए है क्योंकि हम अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत विस्मृत रहते हैं। हमारे पिछले जन्मों के विक्रम तो कब से खत्म हो गए होंगे, क्योंकि वो हमको स्मृति में नहीं है। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में जो कर्तव्य हमको बाबा का मिलता है, जो हम आज्ञाएं मिलती हैं, उन आज्ञाओं का हम अनुसरण नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो हमारे पर बोझ चढ़ता जाता है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, उसको होमवर्क मिलता है और वो होमवर्क करे ही ना, सोचेगा कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, करते करते 2 महीने की छुट्टियाँ जो मिलती हैं बीत गई सारी। फिर जाके स्कूल में क्या होगा, फिर टीचर से मार पड़ेगी। तो यहाँ तो बाबा तो नहीं हमको मारता, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे सिर पर के ऊपर बोझ बन के खड़े हो जाते हैं। तो हमको डेली अपने आप को, अपने कर्तव्यों को स्मृति में रखना है कि मुझे कौन कौन से कर्तव्य मिले हैं। बाबा ने कहा तुम आत्माएं सारे विश्व की आत्माओं को ठिकाना देने वाली हो, लेकिन हमारा खुद का ठिकाना नहीं होता है तो दूसरों को ठिकाना कैसे देंगे। तो कर्तव्यों की स्मृति बार बार रियलाइज और रिवाइज करना है। आज के सवेरे अमृत वेले में 4:30 बजे बाबा के महावाक्य थे ना, क्या महावाक्य थे किसको याद है? हाँ, रियलाइजेशन और रिवाइज करो, रिवाइज और रियलाइजेशन। क्योंकि हम उसको दोहराते नहीं है, दोहराते नहीं है, इसलिए वो हमारे अपने बनते नहीं है। वो जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं, और एक बार आदत पड़ जाती है, एक बार वो संस्कार पड़ जाते हैं, तो फिर सदा काल वही संस्कार रहते हैं। और फिर संस्कारों को नया बनाना बड़ी मेहनत लगती है। मान लीजिए लंबे समय तक हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, रोज़ हम मुरली को रिवाइज भी कर रहे हैं, रियलाइज भी कर रहे हैं, और फिर कुछ दिन छोड़ दो उसको, फिर दोबारा उस लाइन पर आओ, तो कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि साधारण पथ थोड़ा नहीं है, ये परमात्म साधना का पथ है। इसलिए बाबा कहते हर घड़ी रियलाइज रिवाइज करते रहो। तो ये ब्राह्मण जीवन अर्थात हीरे तुल्य जीवन, हीरे की चमक भले मिट्टी में हो लेकिन अपनी चमक छोड़ता है वो। हम संसार के किसी भी कोने में हों, चाहे ब्राह्मण संगठन में है चाहे गैर ब्राह्मण संगठन में है, लेकिन हमारी चमक जो है निरंतर दूसरों को उस चमक का अनुभव होते रहना चाहिए। कौन सी चमक? कोई चेहरे की चमक नहीं, चेहरे पर चमक तो आएगी आएगी, क्योंकि ये चेहरा हमारे संकल्पों का दर्पण है। हम जो भी सोचते हैं अंदर में, वो सारे संकल्प हमारे चेहरे को हर सेकंड परिवर्तन करते रहते हैं। नेगेटिव सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, अपने आप ही महसूस किया होगा सबने, और पॉजिटिव सोचो कितना फर्क पड़ता है। कई बार मेडिटेशन में बैठते समय एक ही समर संकल्प करते हैं, थोड़ा भाई जी आगे आगे आ जाएंगे पीछे माते हैं, कोई भी एक समर संकल्प करते हैं कि मैं स्वराज्य अधिकारी शक्तिशाली आत्मा हूं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक करंट आ जाता है जैसे एकदम। और एक संकल्प करते हैं मैं शांत रूप आत्मा हूं, तो धीरे धीरे शांति में चले जाते हैं। तो संकल्प में सचमुच बहुत बड़ी ताकत है। और वो संकल्प कहाँ है? रोज हमको संकल्पों का भंडार मिलता है, लेकिन उन संकल्पों को हम अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं, अपनी मलकियत नहीं बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको इतनी मलकियत देता हूँ, और मलकियत हम हमारे से माया छीन के लेके चली जाए तो कैसा लगेगा। बाबा को भी बच्चों पर हंसी आती है, था ना आज की मुरली में, कौन सी हंसी आती है? आज की मुरली में था पॉइंट, बाप दादा को बच्चों पर हंसी आती है, कौन सी हंसी आती है? बच्चे अपने भाग्य के बारे में सोचते कि बाप मेरा भाग्य, और जैसे परिस्थिति आती है बस में कहाँ भाग्य गया, कहाँ भाग्य विदाता गया, सारा दौड़ गया भाग्य, और खुद भी भागे भागे इधर उधर फिर रहे हैं। तो स्मृति नहीं रहेगी तो फिर कैसे हम समर्थ बनेंगे? तो स्मृतियाँ हमको समर्थ बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं, जो भी सुस्ती उस्ती ना खत्म हो जाती है। हम कई बार यही अनुभव करते हैं अमृत वेले, 15-20 दिन वरदान रिवाइज करते हैं बार बार, उसको रिवाइज करते रहो और एकदम एनर्जी आ जाती है। फिर एक ही संकल्प में बैठ जाओ मैं अशरीरी आत्मा हूँ, सीधा बाबा से किरणें आ रही हैं उस निराकार से, मैं निराकार आत्मा और संसार की सभी निराकार आत्माओं को एनर्जी जा रही है, इसी एक संकल्प के साथ फिर आधा घंटा निकल जाएगा, पूरी चुस्ती फुर्ती रहेगी। तो बिना प्लानिंग के बैठेंगे तो फिर बदलाव नहीं होता है, इसलिए पहले से तैयारी चाहिए, पहले से हमारी प्लानिंग चाहिए। और इतना सारा बाबा हम सबको विस्तार से महावाक्य हमारे सामने खजाने के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि ज्यादा हमको बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है, सब मिला हुआ हमको, केवल उनको पढ़ो, देखो, निहारो, अदल बदल के देखो, उसके बारे में सोचो, उनको उनका चिंतन करो, उनका स्वाद लो, उनका टेस्ट लो, अलग अलग तरीके से महावाक्यों को अपने जीवन में हमारे खून में चला जाना चाहिए। जैसे अगर सांप थोड़ा सा भी डस लेता तो उसका विष एकदम पूरे शरीर में चला जाता है, तो भगवान तो कौन है, नीलकंठ है वो, तो उसका एक महावाक्य का जो है हमारे रस नस में समा जाना चाहिए, जो बाबा कहते ना इतनी खुशी होनी चाहिए, कितनी रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। रोमांच क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं वो, अच्छा इधर ही होते हैं, ये शरीर के जो बाल एक खड़े हो जाते हैं ना, तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो हमको हमारा भाग्य कितना बड़ा, स्वयं भाग्य विधाता हमारे भाग्य का निर्माण करने के लिए अवतरित हुआ है, कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात है, लेकिन स्मृति नहीं रहते, हम सोचते हैं कि माया हमारा चक्कर लगाती आ रही है, लेकिन बाबा हमारा हमारी सेफ्टी करता है। कल के स्लोगन में था सेफ्टी का साधन क्या है, ब्रह्मा बाबा की भुजाओं में समाये रहे हो तो सेफ्टी होती रहेगी। तो ब्रह्मा बाबा की भुजाएं कहाँ दिखती तो है नहीं, कौन सी भुजाएं, हाँ महावाक्य, ब्रह्मा बाबा के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को अंदर ही अंदर चिंतन करते रहो, वही बाबा की भुजाएं हैं। बाकी स्थूल में मेडिटेशन में भी वो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के जो हम मेडिटेशन करते हैं उसमें इतनी ताकत नहीं आती है, इसलिए ज्ञान को प्राथमिकता, क्योंकि ज्ञान हमारा पहला सब्जेक्ट है, वो हमारा फाउंडेशन है, ज्ञान के आधार पर ही हम जीवन में धारणाओं को मजबूत कर सकते हैं। जब हमको किसी चीज की नॉलेज नहीं है प्रॉपर तरीके से तो हमारे जीवन में उतनी मजबूती आती नहीं है, फिर हमारा जीवन लड़खड़ाता रहता है। तो ये ब्राह्मण जीवन क्या है, उत्सव का जीवन है, उमंग उत्साह का प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हर पल उत्सव से संपन्न हो, हर दिन उत्सव वाला है। अच्छा अभी मेले में जाते हैं तो मेले में क्या क्या खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदते हैं, तो यहाँ कौन से कपड़े खरीदने, हाँ और नहीं खरीदना कौन सा है, सफाई तो हम नहा धो के चले गए ना मेले में, लेकिन मेले में क्या खरीदना है हमको, बाबा ने कहा फरिश्ता ड्रेस खरीदनी है, और कौन सी ड्रेस है, देवताई ड्रेस। और ये मेला कहाँ लगा हुआ है, यहीं तो लगा हुआ है, ये बाप के सन्मुख बैठे हैं, बच्चों और बाप का मिलन हो रहा है, मधुर मिलन हो रहा है, ये सबसे ऊंचा मिलन है। तो बाबा जैसे एक मेले के रूप में हम सारे हमारे सामने इतना सारा बखर सामान सामने रखा हुआ है, जो चाहिए बाबा कहते ले लो, खुला खजाना है, कोई दरवाजे नहीं है। पिछले संडे की मूल्य में था ना, मेलन के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कोई पर्दा नहीं है, लेकिन बच्चे बातों के पर्दों के पीछे चले जाते हैं, कौन कौन सी बातें करते रहते हैं, कौन कौन सी बातें करते रहते हैं जो नहीं करनी अपने को, झारमुई जगमुई पर चिंतन, या अच्छा दूसरे से हम नहीं बोलते हैं तो अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन करते रहते हैं, उनको हमने पकड़ के रखा हुआ है, मेरे साथ ये हो गया था, अरे भाई हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हो, उसको कुछ तो कर नहीं सकते, चला गया उसको, उसके लिए बाबा ने बोला फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि उसको बाबा भी नहीं कुछ कर सकते हैं, जो बाबा कहते हैं आधा तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन फिर अगले दिन बाबा कहते हैं माफ़ तो होता नहीं है कुछ भी, बाबा भी चेंज हो जाता है समय पर, क्योंकि बाबा तो बच्चों को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं ना। तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, अपने मन को हमने उलझनों के जंगल में डाल दिया है, फिर अपने मन को कांटे चुभते रहते हैं, अपने संस्कार हमारे सामने कांटे बनकर स्वयं को तंग करते रहते हैं, और उनको हम छोड़ते भी नहीं, क्योंकि उनको अपना मान के रख लिया हुआ है। बाबा कहते संस्कार माया भी संस्कार हमारे नहीं है, वो तो रावण के संस्कार हैं, क्यों दूसरे के संस्कारों को पकड़ के रखा हुआ है, अगर दूसरे की चीज़ को पकड़ के रखेंगे तो उसकी नज़र तो हमारे ऊपर रहेगी ना, वो हमें क्या सोचेगा, ये मेरी प्रॉपर्टी रखी है, भगवान का बच्चा और मेरी प्रॉपर्टी रखी है, उसको फिर माया को भी तंग करने का मजा आता है, नए नए रूप में ऐसे तो आती है। तो हम जो भी पास के संस्कार है, कुछ भी हो गया लाइफ में भूल जाने का, हाँ कई बार ऐसी घरों में परिस्थितियां तो आती हैं, क्योंकि कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जिसके सामने आती है पता तो तब चलता है। तो घरों में परिस्थितियां आती हैं ना, बड़ी खतरनाक परिस्थितियां आती हैं, हम तो कई बार माताओं की परिस्थितियां सुनते हैं, क्योंकि भाइयों को कम आती हैं, बाबा मुरली में बहुत जिक्र करते हैं ना, माताएं बंदेलियां हैं, तो बहुत परिस्थितियां आती हैं, तो बाबा माताओं को हेल्प भी वैसे ज़्यादा करते हैं। तो रोज़ घर में विशेष रूप से मातें जो भी भोजन बनाती हैं या जब भी घर में टाइम मिलता है तो सबसे पहली बात हमको झरमुई जगमु में बिल्कुल नहीं जाने का है। जो भी थोड़ा सा टाइम मिला घर को एकदम परमात्म शक्तियों से भर दो, चार्ज कर दो अच्छी तरह से। बाबा ने बताया ना, आज साइंस के साधन है, वो रफ माल को भी कितना अच्छा बना देते हैं, नया रूप बना देते हैं। तो क्या तुम अपनी साइलेंस की शक्ति से आत्मा को नहीं बदल सकते हो? और हमारे साथ स्वयं भगवान है, वो सुप्रीम अथॉरिटी हमारे साथ है, तो क्यों नहीं होगा? लेकिन अपने ऊपर थोड़ा फेथ चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती जो बाबा कहते हैं, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय की नींव हमारी डगमगाए नहीं। परिस्थितियां तो इतनी भयंकर भयंकर आएंगी, बाबा ने कहा आगे जाके इसमें बहुत नाजुक आने वाला है, तो उसके लिए पहले से हमको तैयार करना पड़ेगा। अगर नाजुक ही हमने अपने आप को बना के रखा तो आने पर हम धोखा भी खा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं परिस्थितियां क्या है, हमारे लिए टीचर हैं ये, हमारा शिक्षक है ये, हमको पाठ पढ़ाती हैं। और परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी, क्योंकि बीज तो हमने बोए हुए हैं ना, हमारे सामने आएगा। अब खेती हमने की है तो काटनी तो हमको पड़ी है ना, लेकिन वो कभी जल्दी फसल आ जाती है, कभी देर में आ जाती है ना। जैसे बरसात होती है तो 6 महीने जो बीज हैं वो सुषुप्त मात्रा में पड़े रहते हैं, पूरा जंगल कैसे दिखाई देता है, खाली खाली दिखाई देता है, सूखा जंगल दिखाई देता है। लेकिन जैसे बारिश होती है सारी धरती दिखाई नहीं देती, पूरा हरियाली हरियाली दिखाई देती है। ऐसे ही हमने कितने अनेक जन्मों में पता नहीं कौन कौन से कर्मों के बीज बोए हुए हैं, और ये तो अहो सौभाग्य बाबा का जो हमको ये ज्ञान मिल गया कर्मों का, कर्म सिद्धांत की, कर्म फिलॉसफी का हमको पता चल गया। तो हम फिर भी इस ज्ञान को अगर विस्मृत करते हैं तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा डैश डैश देखना तो यहां देखो, डैश डैश तो समझिए, बड़े समझदार हम सभी और डैश डैश देखना तो वो भी यहीं देखो, दूसरा डैश डैश कौन, समझदार। हाँ, तो हम सब बाबा के महान बच्चे हैं, स्वयं भगवान के हम सिलेक्शन बच्चे हैं। तो परिस्थितियां जीवन में आएंगी, हमको घबराना नहीं है। तो ब्राह्मण अर्थात सबसे पहले सदा हीरे तुल्य जीवन वाले, दूसरा ब्राह्मण अर्थात सदा उत्साह में रहने वाले, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, तीसरा ब्राह्मण अर्थात अनेकता में एकता। बाबा ने कहा ना गायन है टॉपिक तुम बच्चे रखते हो, अनेकता में एकता। और सचमुच हम सभी अलग अलग प्रांत से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, सबकी भाषा अलग अलग है, सबका पहनावा अलग अलग है, सबका खान पान भी अलग अलग है, लेकिन बाबा ने हम सबको एक ही माला में पिरो दिया है ना। जैसे मेरा बाबा है उसकी ट्रांसलेशन कोई नहीं हो, मेरा बाबा आएगा ओम शांति है तो ओम शांति आएगा। अच्छा श्रीमत सबके लिए एक जैसी है, याद करने का तरीका सबके एक जैसा ही है। तो बाबा ने जैसे हम सबको एकता के सूत्र में पिरो के रख दिया। तो कोई ऐसी भी बात होती है जिनकी कोई ट्रांसलेशन नहीं होती है, चाहे कोई भी भाषा हो। जैसे एक बार एक चुटकुला सुना देते हैं बीच में। तो एक बार एक सरदार जी विदेश में गए, तो सरदार जी ने विदेशी से बोला, विदेशी कहता सरदार जी को कि हमने आपकी सारी हिंदी सीख ली है। तो सरदार जी कहता अच्छा सारी हिंदी सीख ली? बोला हाँ। तो कुछ कुछ शब्द बताया उसने हिंदी के, धन्यवाद, थैंक्स पूछा तो बोल उसने बता दिया विदेशी ने धन्यवाद, अच्छा यस माना हाँ जी, जैसे बहन जी सवेरे बता रहे थे, नो माना नान जी, अच्छा गुड माना अच्छा, ये सारी बातें बता दी। तो बोला सबकी ट्रांसलेशन मैंने सीख ली है। तो सरदार जी तेज थे यहाँ पर, वैसे तो चुटकुले उल्टे पड़ते हैं लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है, आज बाबा ने पॉजिटिव थिंकिंग क्रॉस कराया ना। तो सरदार जी ने बोला इसकी इंग्लिश क्या होती है अब बताओ। तो भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं है, वैसे तो हम सब एक ही घर से आए हैं, चाहे विदेशी हो भारतीय हो। तो इसकी इंग्लिश है कोई? कोई इंग्लिश नहीं है। तो ये है विविधता में एकता, है ना, अनेकता में एकता। तो बाबा ने हम सबको ओम शांति, और याद का सूत्र भी एक ही है, अपने आप को आत्मा समझो, मुझे याद करो, सारे ज्ञान का सार तो यही है। तो बाबा हमारे जीवन में कितनी रमणीकता गंभीरता भी भर देते हैं। हाँ बाबा कहते हैं ये अभी तो ताज पहना हुआ काले रंग का, लेकिन फिर क्या होगा, सिर पर ताज बनेगा, है ना, ये भी एक दिन बदल जाएगा। तो अपना राज्य याद रहता है, अभी आप अपने को सेवाधारी समझते हो और फ्यूचर में राज्य अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन राज्य अधिकारी वही बनेंगे जिन्होंने स्वयं को अभी अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा क्या किया है, कंट्रोल, नियंत्रण। तो ये बहुत बड़ी हमारी साधना, सबसे पहली साधना तो वैसे है हमारा स्वयं की कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना फिर भी आसान है, लेकिन उससे मेहनत वाला काम क्या है, अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखना। क्योंकि लंबे समय से संस्कार अंदर में कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो सहज निकलते नहीं है। इतने द्वापर युग से कब्जा लगा के रखा है रावण ने हमारे अंदर में, तो सहज थोड़ा अपना कब्जा छोड़ेगा वो। लेकिन उसको बड़े प्यार से विदाई देना। बाबा कहते हैं ना, माया तो बार बार बच्चों से विदाई लेना चाहती है, लेकिन बच्चे ही उसको चाय पानी पिलाते रहते हैं, उसकी आवभगत करते रहते हैं, जैसे बिल्ली क्या करती है, मैं आऊं, तो माया भी ऐसे करती है, मैं आऊं, और बच्चे फिर आने देते हैं, क्योंकि अकेले होते हैं। बाबा को तो अकेले में याद करना है, और फिर कोई साथी मिल जाता है। जैसे विदेशियों के बारे में बाबा ने क्या कहा, कई बार कंपनी भी चाहिए और कई बार अकेला भी अच्छा लगता है, और कंपनी को छोड़ भी देते हैं। विदेशियों में तो ऐसी परंपरा चलती आई है। तो हम खुद ही माया को बुलाने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा तो हमारा हाथ पकड़ के रखता है ना। आज के स्लोगन में क्या था, इसी से संदर्भित था, हाँ, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो डैश डैश बन जाएंगे, एच एच बन जाएंगे। पहले क्या था, होलीएस्ट था, हाईएस्ट था, होलीएस्ट था, पहले होलीएस्ट था, हाँ, पहले होलीएस्ट था, फिर हाईएस्ट था। अच्छा, हाँ जी, कौन चाहिए आपको, आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ। किसी को इंजेक्शन लगाना होगा, शिशु भाई को भी ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब तक उन्होंने किसी का इलाज नहीं किया, तब तक उनको चैन में, दूसरों को चैन देने में उनको खुद चैन मिलता है। तो बहुत सेवा करते हमारे आशीष भाई भी। तो बाबा कहते हैं हमेशा क्या है, एक अनेकता में एकता है। अब हम संगठन में रहते हैं, इसमें यह फायदा होता है, हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर हमारी गुण ग्रह की दृष्टि है, सबके प्रति अगर हमारे हमारा थॉट सिस्टम है, ऊंचा है, सबको हम सम्मान से देखते हैं, जिस सम्मान में हम रहते हैं उसी सम्मान से दूसरों को भी देखना। नहीं तो पहले भी हमने बताया था, कई बार क्या होता है, हम तो खुद सम्मान में रहते हैं और दूसरों को साधारणता में देखते हैं, तो भी हमारा परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं सोचूं मैं इष्ट देव हूं, तो दूसरों को भी उसी नज़र से देखना है कि ये भी इष्ट देव, इष्ट देवियाँ हैं। अगर हमें सोचते मैं इष्ट देव हूँ, ये तो साधारण ही है, तो हमारे जीवन में के संस्कार कभी नहीं बदलेंगे। वो जितना मर्जी हम ज्ञान योग कर ले, क्योंकि हमने दूसरों के प्रति भावनाएं खराब रखी है। जब तक दूसरों के प्रति हमारी भावना ठीक नहीं होगी, तो बदलाव कैसे होगा। दूसरों के प्रति भावना खराब ना करना, अर्थात हम भगवान के महावाक्य को इंसल्ट कर रहे हैं। बाबा किसी के प्रति खराब सोचते हैं कुछ, और हम किसी के प्रति खराब सोचे तो, लेकिन सारे दिन में खराब तो कई सोच भी लेते हैं, भले वो किसी जाति के बारे में, किसी संप्रदाय के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी देश के बारे में, या किसी कोई खेल के बारे में, कहाँ कहाँ हमारी एनर्जी जाती रहती है। भले किसी ने कुछ भी किया हुआ है, लेकिन हैं तो भगवान के बच्चे हैं ना, वो तो अज्ञानतावश किया है। अभी हम ज्ञान मिलने के बाद भी अगर वही करें, तो उनमें और हमारे में क्या फर्क रहा, क्या अंतर रहा। तो हमको ये देखना कि जिस सम्मान में हम स्थित रहते हैं, उसी सम्मान से दूसरों को देखना है, उनको सम्मान देना है। आत्मा जो है वो सम्मान की प्यासी है, सम्मान चाहिए उसको। पहले हम अपने आप को सम्मान दें, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हमेशा सम्मान की सीट पर सेट रहो। कितने बाबा हमको सम्मान देते हैं, लेकिन उसके लिए अंतर्मुक्ता की गुफा में, आज था ना मुरली में, बाह्य मुक्ता की बजाय अंतर्मुक्ता की गुफा, अंदर के संसार में खोए रहना है। बाहर इन आंखों से बहुत कुछ देख लिया, मन से बहुत कुछ सोच लिया, मुख से बहुत कुछ बोल दिया, अभी कुछ अपने प्रति भी शुभ शुभ बोलो, अपने प्रति भी कुछ अच्छा अच्छा बोलो। क्योंकि जब तक हम स्वयं को अच्छा नहीं बनाएंगे, दूसरा कोई हमको अच्छा लगेगा ही नहीं। ऊपर ऊपर से हमने सम्मान ले लिया, लेकिन अंदर तक नहीं जा रहे, क्योंकि दूसरों को देखने का एटीट्यूड हमने चेंज नहीं किया है। तो जिस दृष्टि से बाप दादा हमको देखते हैं, उसी दृष्टि से हमको सबको देखना है कि ये सभी कौन सी आत्माएं हैं, हीरे तुल्य आत्माएं हैं, ये सभी कौन सी आत्माएं हैं, त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं, मास्टर त्रिनेत्री आत्माएं हैं, और कौन सी आत्माएं हैं, हर समय उत्सव मनाने वाली आत्माएं हैं, और कौन सी आत्माएं हैं, ब्राह्मण अर्थात, और क्या, और क्या क्या बताया आज, ब्राह्मण अर्थात सदा मौज में रहने वाले, ब्राह्मण बिना मौज के ब्राह्मण था, तो मंग उत्साह वाला, हर श्वास मंग उत्साह वाला, तो मौजों भरा जीवन है। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? मूंजे तो हम जन्म जन्म मूंजते रहे, लेकिन मौज का जीवन तो ब्राह्मण जीवन का है। कितनी मौजें हैं कि हमको ज्यादा सोचने, जो हमको सोचना उसके लिए भी बाबा हमको संकल्प दे रहे हैं, जो बोलना है बाबा वो भी हमको सिखाते हैं, क्या क्या बोलना है, कैसे चिंतन करना वो भी सिखाते हैं, सेवा कैसे करनी है वो भी सिखाते हैं, कपड़े कैसे पहने हैं वो भी सिखाते हैं, चलना कैसे है वो भी सिखाते हैं कि धीरे धीरे चलना है, आवाज़ नहीं आए, टक 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 की आवाज़ नहीं आए, छोटे बच्चे को जैसे माँ सिखाती है बाबा हमको वैसे सिखाते हैं। कितना हमारे जीवन में शिष्टाचार, सभ्यता, शालीनता, बाबा दिन प्रतिदिन हमको उससे श्रृंगारते रहते हैं। तो एक छोटे बच्चे की तरह स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा फिर? तो इसके लिए थोड़ा चिंतन चाहिए, नहीं तो हम विस्मृत हो जाते हैं। फिर आ जाता भगवान साइड में और हम साइड में रहते हैं, फिर हमारा रिश्ता भगवान के साथ जैसे भक्त जैसा हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं बाबा मेरी परेशानियां दूर कर दो, इतने सालों से याद करती आ रही हूँ, कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भक्ति वाले संस्कार हो गए। मांगना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगने की जरूरत है, वो अपने ही सारा ही अपना हो गया है। जैसे बताते हैं ना, छोटी बच्ची ने राजा को हाथ लगा दिया, राजा ही उसका हो गया, तो सारा उसका राज्य ही उसी का हो गया ना। तो उस समय भगवान को हमने पकड़ के रखा है, कहते ना भगवान मेरी मुट्ठी में, तो स्वयं भगवान ही हमारा अपना हो गया, भाग्य विधाता ही अपना हो गया, तो और हमको क्या चाहिए इसके लिए? तो हमेशा अपने भाग्य का सिमरन करने वाले, चार पांच दिन पहले था ना प्रदान, स्मृति और सिमरन, तो भाग्य हमारा विस्मृत ना जाए। हमारा भाग्य तो दूसरे को, दूसरे के भाग्य का निर्माण करने के लिए है। हमारा जन्म अनेक आत्माओं के भाग्य को चमकाने के लिए है, और खुद ही नहीं चमक पा रहे हैं, खुद ही धूल मिट्टी में पूरा दिन हम अपने मन बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों में उलझा के रख रहे हैं, वही व्यर्थ संकल्पों की धूल है, उसी से मैले हो जाते हैं। फिर शाम को थोड़ा सा टाइम मिलता है, 15-20 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं, गुड नाइट करके फिर सो जाते हैं, फिर सवेरे थोड़ी सी आत्मा साफ होती, फिर मैल चढ़ती है, फिर शाम होती है, ऐसे चक्कर चलता रहता है। तो ऐसे चक्कर में फंसने की बजाय हमको समर्थ स्मृतियों का स्वयं के पास के जाना भर के रखना है। और ब्राह्मण अर्थात क्या बताया बाबा ने आज में, आज की मुरली में बहुत सारी बातें, अभी तो होलीएस्ट हाईएस्ट, हाँ ये तो हो गया है। और ये होलीएस्ट हाईएस्ट, जितना हमारा मन बुद्धि पवित्र होगा उतना ज्ञान रत्न ठहरेंगे, और मन बुद्धि बिना ज्ञान के पवित्र होगा ना, बिना चिंतन के पवित्र नहीं होगा। योग आत्मा में ताकत भरता है, लेकिन वो ताकत का अनुभव तब होगा जब ज्ञान के साथ योग करेंगे हम। बिना ज्ञान के योग करेंगे शून्य अवस्था में तो उतना शक्तिशाली नहीं बनेंगे, फिर परिस्थितियां आने पर हम डगमगा जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, जिस समय हमको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस पॉइंट की, वो हमको समय पर याद नहीं आएगी, क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया उसको। अर्थात तो ब्राह्मण अर्थात सदा मौज में रहने, हमारे एक पल भी बिना हमारा मौज के ना हो, हमेशा खुश रहने वाले, दूसरों को खुशी देने वाले हैं। और ब्राह्मण अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग, हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की कला, तुरंत हाथों हाथ ताबड़तोड़ एकदम, है ना। तो और ब्राह्मण अर्थात बाबा कहते, दूसरों को तो कोर्स करा लेते हो, अपने आप को कोर्स कराओ, स्वयं को कोर्स कराओ, और स्वयं में फोर्स भरो, ज्ञान का फोर्स, शक्तियों का फोर्स, गुणों का फोर्स, पवित्रता का फोर्स, और कौन सा, दुआओं का फोर्स, संतुष्टता का फोर्स, कितने सारे खजाने हमको मिले हुए हैं। तो खजानों से अपने आप हमको खेलते रहना है, अपने आप को भरपूर रखना है। और क्या कहा बाबा ने आज, अब थोड़ा आप भी तो सुनाओ, ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए, एक तरफा थोड़ा काम होना चाहिए, आप भी थोड़ा हमारे पर रहम करो। हाँ जी, हाँ, ये एडजस्टमेंट विजय का अनुभव कराती है, और जिसने एडजस्टमेंट होना सीख लिया उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया। कौन सा एग्जाम्पल दिया? वो भी ठीक है, 20 के भी ठीक है, वो भी अच्छा, लेकिन एग्जाम्पल कौन सा दिया? और एक और एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा की, एग्जाम्पल के बच्चों को बैगरी पार्ट का भी अनुभव कराया, तो राजाओं का भी अनुभव कराया। तो बाबा कहते हो परिस्थिति तो फिर से आनी है, ऐसा नहीं कि वो बीत गए, फिर से आनी है, उन नाजुक परिस्थितियों के दौर से हमको गुजरना पड़ेगा, लेकिन पहले से हम स्वयं को उतना शक्तिशाली बना लें, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो घर में जो भी हमको सुख सुविधाएं हैं उनका हमको फायदा भी लेना है, लेकिन बिना सुख सुविधा के भी जीना सीखना। और अभावों भरे जीवन में ही साधना होती है, साधनों के बीच में साधना का उतना प्रभाव नहीं रहता है। जब साधनों की कमी है तो तुरंत हमारा मन बुद्धि साधना की तरफ भागता है, नहीं तो साधनों को साधनों की सार संभाल करने में हमारा मन बुद्धि चलता रहता है। साधन भी जैसे एक परिवार की तरह बन जाते हैं, एक बच्चे की तरह बन जाते हैं, उनको सजाना संवारना संभालना, खराब हो गई उनकी मरम्मत कराना। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात त्याग वाला जीवन, तपस्या वाला जीवन, और इस त्याग में सुख समाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। साधनों का उपयोग तो करो, सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो वही साधन हमारे लिए श्राप का काम करेंगे, लेकिन वो साधन हमारे लिए वरदान का काम करेंगे। तो साधन है तब भी ठीक है, साधन नहीं है तो भी ठीक है। तो ये परिस्थितियाँ एडजस्टमेंट, उन परिस्थितियों के दौरान एडजस्टमेंट होना, इससे हमको विजय मिलती है। एडजस्टमेंट होने की कला चाहिए। बाबा ने और एग्जाम्पल दिया ना, ब्रह्मा बाबा का ही, बड़ों के साथ बड़े हो जाते थे, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते। तो ऐसे हमको भी देखना, यज्ञ में हम आते हैं तो हर प्रकार की आत्माएं आती है ना, कोई साउथ इंडियन आ रही, कोई नॉर्थ इंडियन आ रही है, कोई ईस्टर्न से, कोई वेस्टर्न से आ रही, कहीं से भी आ रही हैं, कोई तमिल बोल रहा है, कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, तो सबके साथ एडजस्टमेंट होना है। और कई भाषा तो ऐसी होती है, कई जगह मिठाइयों का नाम होता है और दूसरी जगह उन्हीं उसी भाषा में गालियाँ होती हैं, वो है ना, तो ये भी चक्कर होता है। तो वो भी सोच हमको सब सीखना चाहिए, इसलिए हिंदी जो है ना वो सीखनी चाहिए। बाबा ने हिंदी कैसे विदेशियों को सिखाई आज, है ना, हाँ। तो नहीं तो फिर क्या होता है, बाबा आती है और दादी जाता है, ऐसा होता है ना। और देखो इतने इसमें कितनी खुशी भरी हुई है। तो ये भी हमको थोड़ा सा सीखना चाहिए। तो ये भाषा की बात, अनेकता में एकता, तो एडजस्टमेंट होना हर बात में। और क्या बाबा ने कहा आज की मुरली में, संबंध संपर्क में स्थिति क्या बन जाए, माया पेपर के रूप में आती है, हाँ, संबंध संपर्क में माया आती है पेपर के रूप में है। तो एग्जाम तो देंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, एग्जाम तो हर एक को आएगा, तो एग्जाम तो हमको देने के लिए हमेशा तैयार ही रहना है। और दूसरा एग्जाम भी मुरली का खुद ही करते रहना चाहिए। वैसे तो मधुबन में बहुत सारे भाई बहने मुरली का एग्जाम देते रहते हैं अपने अपने स्तर पर। अपने आप को बिजी रखने की प्लानिंग बनानी है ना। कई तो मधुबन वालों के सातों के सात दिन फिक्स हैं, एक दिन मुरली पढ़ने की अच्छी तरह से, दूसरे दिन उसका एग्जाम, तीसरे दिन एक घंटा अलग से योग, ऐसे सब ने अलग अलग अपनी व्यवस्था बना के रखी है। तो हमको खुद प्लानिंग ऐसी बनानी कि सातों दिन हमारे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। बाबा कहते हैं काली मधुबन में बालों के साथ हमारे राजू भाई बैठे थे मुरली वाले, तो बता रहे थे दादी गुलजार जी से मिलने गए थे वो एक बार मुंबई में, तो दादी जी ने कहा एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो व्यर्थ से संपूर्ण मुक्त हो, बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए, तभी उसका प्यार हमारे पर बरसेगा। इतने अनेक जन्मों से हमने व्यर्थ से धोखा खाया, दुख उठाया, और फिर भी हम व्यर्थ में जाएं तो हमारा कैसा भाग्य बनेगा। तो ऐसा व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, जो बाबा ने कहा ना हर बात को पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि व्यर्थ दिखेगा नहीं, जीवन में आएगा व्यर्थ, सुनने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं हो, उनके प्रति भी हमारी शुभ भावना शुभ कामना हो, उनके प्रति भी हमारे उमंग उत्साह भरे बोलो। अगर कहीं व्यर्थ की चर्चा चल रही है तो हमारे बुक से ऐसे बोल निकलने चाहिए कि व्यर्थ वो समर्थ में परिवर्तन हो जाए, वो व्यर्थ बोलने वाला भी समर्थ बोल बोलना आरंभ कर दे। लेकिन वो कब होगा, जब हमने लंबे समय से आदत डाली है समर्थ बोलने की। आज बाबा ने बताया ना, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, बुरा न करो, बुरा न पढ़ो, बुरा न खाओ, और क्या क्या हो सकता है, वो तो तीन चार पांच बातें बताती हैं। बुरा न सोचो, बुरा न बोलो, बुरा न देखो, बुरा न करो, बुरा न सुनो, बुरा न पढ़ो, बुरा न खाओ, और बुराई ना करो, और बुरा ना लिखो, हाँ बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि वो व्हाट्सएप से मैसेज लिखते हैं, फॉरवर्ड दे फॉरवर्ड दे फॉरवर्ड, वो भी तो होता है ना, वहाँ भी क्या लिखना है, लिखना तो पड़ता ही है। और बुरा ना, बुरा संग नहीं करो, और ऐसे लिस्ट में चिंतन को बढ़ाना है, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मजा आएगा, तो रस आना चाहिए। और ये हमको आदत बनानी है, कहीं ना कहीं हम खुद अपने जीवन में देखते हैं चिंतन की कमी होती है तो चिंता लग जाती है, अंदर में मन चलता ही नहीं है फिर, क्योंकि आदत ही डाल देते हैं हम मन खड़ा है, ठीक है, जैसे चलते चल रहे हैं और फिर वो संस्कार बन जाते हैं। तो जबरदस्ती मन को पकड़ के डुबो देना एकदम चिंतन में, मुरली घोट के पिला देनी उसको जन्म गुटी। बच्चों को माएं पिलाती है ना जन्म गुटी, किस लिए पिलाते हैं? स्ट्रांग बनने के लिए। हाँ, तो बाबा भी हमको जन्म गुटी के रूप में पिलाता ना, ताकि हमारे मसल्स भी एकदम ताकतवर रहे। बच्चों की माँ कैसे पालिश करती है, करते हैं ना पालिश, मालिश पालिश, तो बाबा भी हमारा ज्ञान से रत्नों से कितनी मसाज करते हैं। कई बार मुरली में बाबा कहते हैं अगर बच्चे थके जाते तो कहाँ आ जाओ, बतन में आ जाओ, मैं मसाज कर देता हूँ। तो चलो फिर से आधा सेकंड, आधा मिनट के लिए बतन में, और बाबा के पास में ऐसे बैठ के अनुभव करो जैसे बाबा मसाज कर रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और आत्मा अंदर से मुस्कुरा रही है, आत्मा बाबा को देखकर आनंदित हो रही है, जैसे सर्वशक्तियों से चार्ज हो रही है, मुस्कुरा रही है, झूम रही है, नाच रही है, आत्मा जैसे नृत्य कर रही है, और बाबा भी मुझे आत्मा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ जैसे मुझ आत्मा का मसाज कर रहे हैं, मैं आत्मा उमंग उत्साह से भरपूर हो रही हूँ, शक्तियों से चार्ज हो गई हूँ, संपूर्ण पवित्र बन गई हूँ, निर्बंधन हो गई हूँ, स्वतंत्र हो गई हूँ, उड़ता पंछी बन गई हूँ। ओम शांति। तो ऐसे छोटे छोटे बीच बीच में प्रयोग करने। कई बार होता है ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, सेवा में बिजी होते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो अपने अपने तरीके से करना है। भले आधे मिनट के लिए कर लो, बहुत आधा मिनट भी करेंगे ना तो एक आदत पड़ जाएगी, एक घंटे में आधा मिनट भी कर लिया तो भी चार्जिंग लगेगी, तो भी हमारा धीरे धीरे व्यर्थ से अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी। फिर सामने वाले अगर कोई व्यर्थ बोलेगा ना, अंदर मान ही नहीं करेगा, हम उसको ही समर्थ बोल बोलेंगे, दोबारा हमको व्यर्थ बोलेगा ही नहीं फिर। और हमारा कर्तव्य है व्यर्थ से स्वयं मुक्त रहना और सबको मुक्त करना है, ये हम सबका कर्तव्य है। व्यर्थ को बढ़ावा नहीं देना है, हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, वहां बैठ के अपने जीवन को साधारणता में नहीं गंवा देना है। हीरे तुल्य जीवन और कौड़ियों में बदल दें तो कितनी खराब बात है वो, कितना मुश्किल से तो भगवान ने हमको ढूंढा है, कहाँ गली गली से गांव गांव में जाकर कितनी हमारी बहनें गई होंगी, कितना मेहनत करती हैं हमारी बहनें, वहाँ जाके ढूंढती हैं। यहाँ तो सहज हम देखते हैं कि सब आ रहे हैं, लेकिन एक एक भाई को, एक एक बहन को, आत्मा को लाना कोई साधारण बात नहीं है, कितना पीछे पड़ना पड़ता है उनके, तब जाके तैयार होते हैं। और फिर भी वो अपनी फरमाइश रखते हैं कि वहाँ जाकर हमको सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए, घुमाना फिराना चाहिए। तो बहनों को कितना सुनना पड़ता है, समाना पड़ता है, उनकी पालना करनी पड़ती है, कहीं नाराज ना हो जाए। तो एक एक बाबा के बच्चे को तैयार करने के लिए हमारी बहनें कितना कुर्बानी देती है, कोई साधारण काम थोड़ा नहीं है, है ना। तो एक हमारी टीचर बहनों के लिए भी क्लैपिंग कर दो, ताली बजा दो अच्छी तरह से, उनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है, है गुजारा नहीं गुजारा ना। हाँ, तो बाबा का एक एक बच्चा अमूल्य रत्न है। माताएं हैं, माताओं के लिए बाबा कितनी महिमा करती हैं, घरों में रहती है, कितना सुनना पड़ता है वो भी, है ना। बच्चे की फरमाइश अलग होती है, फिर बहुओं की फरमाइशें अलग होती हैं, बेटी की अलग होती है, पति की अलग होती है, सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। सबके बीच में रहकर अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी बना के रखना ये भी साधारण बात नहीं है ना। तो अभी माताओं के लिए ताली बजा दो एक बार, है ना। अच्छा, भाइयों के लिए क्या कहेंगे, भाइयों की तो बात ही मत पूछो, है ना। तो सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। बाबा कहते हैं शक्तियों के बिना पांडव नहीं है, पांडवों के बिना शक्तियां नहीं है। तो एक बार सभी के लिए बना दे ताली, है ना। और एक बार बाबा के लिए तो हाँ, जिसने हमको इतना ऊंचा जीवन दिया, मुस्कुराता जीवन बना दिया, खुशबूदार मुस्कुराते हुए फूल बना दिया, वरदानी जीवन बना दिया, हीरे तुल्य जीवन बना दिया, है ना। कितने टाइटल से बाबा हमको, बाबा ने हमारा श्रृंगार कर दिया, तो कितना बाबा का धन्य करें। तो हमेशा अपने भाग्य का गुणगान करते रहना, अपने भाग्य का, परिवार का भी गुणगान करना, ड्रामा बा ड्रामा बा। तो अभी हम सभी एक गीत, छोटा सा गीत गाएंगे, है ना, सभी बोलेंगे बा 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 बा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बा ड्रामा बा, वाह मीठा ब्राह्मण परिवार बा, वाह पूर्वज बा, वाह पुरुषोत्तम संगम युग बा, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य बा, वाह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा बा, वाह माया बा। ओम शांति।